तो सर अगर आप स्टार्ट कर पाए बता के कि आपकी डाइट में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सीनियर लेक्चरर के हिसाब से।
देखिए बेसिकली मेरा नाम सलमान मेराज है और मैं सीनियर लेक्चरर हूँ, पीएस बोलते हैं, कैडर हमारा होता है। डाइट के जो भी फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, प्री सर्विस और इन सर्विस, मेन काम यही होता है डाइट का। तो उसमें प्री सर्विस में क्या होता है कि जो बच्चे वगैरह होते हैं डीएल एड वाले बीटीसी, उनको ट्रेनिंग दी जाती है शिक्षण से पहले, यानी टीचिंग से पहले। इन सर्विस में जो टीचर्स वगैरह होते हैं, जो कार्यरत हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं स्कूलों में, उनकी समय समय पर हम ट्रेनिंग कराते हैं यहाँ पर, ताकि क्वालिटी आ सके एजुकेशन में, ठीक है। और जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के, उन बच्चों के पास तक के जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या इंटरनेट के माध्यम से, या दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा ऐप, इसमें टीचरों को हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो बच्चों को पूर्ण रूप से अच्छे से बता सकें और क्वालिटी एजुकेशन अपलोड हो सके।
तो सर आपकी सीनियर लेक्चरर की पोस्ट में एकेडमिक ड्यूटीज़ क्या क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ क्या क्या है?
एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ में तो ये है कि लेक्चरर हैं यहाँ पर, जैसे अभी बच्चों का क्लास वगैरह चल रहा है बीटीसी वालों का, तो उनका सबका ये देखना कि भाई सही से क्लास हो रही है नहीं, क्लास मैनेजमेंट सही है नहीं, सीटिंग वगैरह बच्चों की ठीक है, या जो क्लास होनी है बोर्ड वगैरह पे, या प्रोजेक्टर से पढ़ाई होनी है, ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखना होता है। यहाँ की कुछ ज़रूरतें हैं तो उनका पूरा करना होता है, लिख के भेजना होता है, आगे रिपोर्ट करनी होती है, या गवर्नमेंट के कोई प्लान चल रहे हैं तो हम मंथली जो है एक समीक्षा बैठक करते हैं, जो हमारे यहाँ के ARPs हैं, SRGs हैं, उनको बुलाते हैं, BSA को बुलाते हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो उनसे पूछते हैं कि क्या क्या जो गवर्नमेंट की स्कीम है उस पर कितना काम आपने कर चुके अब तक, उसका क्या क्या रिजल्ट निकल रहा है, ये सब चीज़ें हमारा आता है।
अच्छा, आपकी कोई सीनियर लेक्चरर के हिसाब से एकेडमिक ड्यूटीज़ भी होती है?
जी, एकेडमिक ड्यूटीज़ में ये होता है कि जैसे अब DRUs एक यूनिट है एडल्ट एजुकेशन को लेके, ठीक है, उसका हेड जैसे मुझे ही बनाया हुआ है यहाँ पर,
अच्छा,
ठीक है, यहाँ पे 6 विंग्स होती हैं बेसिकली, ठीक है ना, उन 6 विंग्स में जो 6 ही वरिष्ठ प्रवक्ता हेड होते हैं, यहाँ पर 4 वरिष्ठ प्रवक्ता हैं इस समय, दो किसी के पास दो हैं, जैसे मेरे पास दो हैं, टेक्निकल वाली, टेक्निकल एजुकेशन, और DRUs वाली एडल्ट एजुकेशन, उसको लेके अभी हमने एक प्रोग्राम चला था UP में, तो जो जितने भी साक्षरता को लेके एडल्ट हैं उनका हमने डाटा SCRT को भी भेजा था,
अच्छा,
कि कितने साक्षर हो चुके और कितने नहीं हुए, तो उसके लिए ओरिएंटर हैं, वो ग्राम प्रधान जो होते हैं उनसे जाके मिलेंगे, उसकी समीक्षा हम करते हैं, देखते हैं, ताकि जो ओरिएंटर हैं वो अपने माध्यम से स्वैच्छिक होकर सबको शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके घर घर, ये सब चीज़ें।
जी, तो सर आपको ऐसे क्या क्या सपोर्ट मिलता है और आपको क्या क्या सपोर्ट चाहिए होता है?
सपोर्ट यही है कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जैसे जिस जगह पर हम हैं, एक तो यहाँ पे व्हीकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है डाइट में सबसे पहली चीज़, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क यही होता है कि अगर आप फील्ड पे उतरोगे तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, व्हीकल की होगी, ठीक है, तो बच्चों के पास तक पहुँचना, काफ़ी दूर दूर स्कूल हैं तो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, जैसे 20 स्कूल इंस्पेक्शन करने होते हैं एक महीने में, तो उनके पास तक पहुंचना बड़ा हमारे लिए ना एक टफ हो जाता है काम, तो वो नहीं हो पाता व्हीकल की वजह से। और दूसरा ये समझिए आपके इधर की साइड में बिजली वगैरह, लाइट वगैरह का भी काफ़ी इशू है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आ पाते, तो जितने भी ये ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं वो सही से नहीं हो पाते, ये सब प्रॉब्लम है अगर देखें
तो। जी, तो ये प्रॉब्लम आपको कैसे लगता है कि सॉल्व कैसे हो सकती है और किसके पास से हो सकती है?
ये हमने काफ़ी हद तक हमने अभी सॉल्व इसे कर भी लिया है, जब से सर आए हैं यहाँ पर परमानेंट, तो इन्होंने दो जो गाड़ियाँ हैं वो मंगवाई हैं, एक तो परमानेंट डाइट के काम के लिए ही है कि सपोर्टिव सुपरविजन के लिए हमारे प्रवक्ता जाते हैं, हमें इंस्पेक्शन के लिए जाना होता है तो हम उसे चले जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। अभी भी आगे अगर इसे गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा जाए कि भाई अगर ज़्यादा की ज़रूरत है, जैसे ज़रूरत तो है ही है बेसिकली, तो वो भी भेज सकते हैं,
अच्छा,
कि कम से कम 4-5 व्हीकल हों तो सबके सब चले जाएं और टाइम से काम हो जाए और अच्छे से जो प्रोग्राम है वो भी इम्प्लीमेंट हो सके 100% और बच्चों को उसका फ़ायदा भी मिल सके।
तो सर अभी व्हीकल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ऐसा होता है कभी कभी कि जो टारगेट है जैसे महीने का 20 आपको करना होता है?
जी 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 हाँ, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है उसमें, जो मतलब प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है वो यही है जो मुझे लगा है जहाँ तक।
अच्छा
जी, ये बात है।
तो
और इसके जी जी बताएं आप।
सर जैसे हर डाइट के 6 डिविजन्स होते हैं एक एडल्ट के लिए सर्विस, हर उनके सीनियर लेक्चरर्स एक एक को देखते हैं,
जी जी,
तो जैसे अभी जो ट्रेनिंग आप मेंशन कर रहे थे वो हर डाइट में होती है या फिर मेरठ डाइट में स्पेसिफिकली आप कंडक्ट करवा रहे हैं?
नहीं, वो यहीं पर करा रहा हूँ मेरे डाइट में।
अच्छा,
हर जगह हर डाइट में 6 यूनिट होती हैं।
जी जी,
ठीक है, ये तो पता है। डी आर यूज वगैरह वाली होती है और ये होती है टेक्निकल वाली। टेक्निकल एजुकेशन को लेके जो प्लान हो रहा है, प्लान एंड मैनेजमेंट होता है, प्री सर्विस इन सर्विस ये होता है, ठीक है। एक पूरा ये होता है जो पौधा है, जो एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा है, बच्चों को इसमें वर्क में लगाया जाता है। हर जगह हर डाइट में यही है 6 यूनिट। यहाँ पर जो हूँ, यहाँ पर मैं हूँ मेरठ में, उसको मुझे दिया हुआ टेक्निकल एजुकेशन वाला और DRU वाला।
अच्छा,
बाकी प्री सर्विस में भी था मैं।
तो ये जो ट्रेनिंग है, भी SCERT ने आपको सजेस्ट किया था कराने के लिए या फिर?
नहीं, ये इसका जो अधिकार होता है बेसिकली वो डाइट प्राचार्य को होता है कि वो छह जो है ये वो किस किस को दे यूनिट उसका है। उसके यहाँ पर से आदेश निकल जाता है, कार्यालय आदेश, उसी के अकॉर्डिंग वो दे दिया जाता है।
अच्छा अच्छा। सर आप कितने सालों से इस डाइट में हैं?
मेरी तो अभी फरवरी में आया हूँ, 19 फरवरी।
अच्छा,
नई ज्वाइनिंग है।
अच्छा अच्छा
जी, इससे पहले लखनऊ में SCERT में ही थे।
अच्छा अच्छा
जी।
सर इस पोजीशन पे, जैसे सीनियर लेक्चरर की पोजीशन पे होकर SCERT के साथ आपका किस लेवल पे इंटरेक्शन होता है?
SCERT का यही होता है कि जैसे SCERT ही बेसिकली डाइट को लेके जो भी प्लान वगैरह बनाती है वो डाइट के माध्यम से SCERT हमें भेजता है। ऑनलाइन मीटिंग वगैरह होती रहती हैं हर महीने, मतलब 2 या 3 ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है किसी भी चीज़ को लेके।
अच्छा,
कोई प्रोग्राम है जो डाइट में हो रहा है वो आता है बेसिकली प्राचार्य के नाम से, लेकिन उसके बाद वो देखते हैं प्राचार्य सर के वो किस यूनिट में जा रहा है।
हाँ, हाँ।
तो उस यूनिट के अकॉर्डिंग वो उसी यूनिट के हेड को वो सौंप देते हैं काम।
अच्छा
जी,
तो डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होती आपकी SCERT?
नहीं, डायरेक्ट होती है। अगर कोई मीटिंग है जैसे, तो उसमें सबको डायरेक्ट के सीनियर लेक्चरर और डायरेक्ट प्राचार्य और उप प्राचार्य सबको उसमें जुड़ना होता है।
अच्छा सर, आपको कौन कौन सी मदद मिलती है आपकी यूनिट को अगर SCERT से, आपका कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है?
कोऑर्डिनेशन यही है कि जैसे अभी पत्रिकाओं को लेके इशू हो रहा है कि भाई अपने पत्रिकाएं वगैरह, तो SCERT ने हमसे बोला, अब जो भी हम यहाँ पे अपने लेक्चरर को बताते हैं, किसी किसी की मंशा है भाई कुछ करने की, अपना काम आगे प्रोग्रेस बढ़ाने की, तो वो अपने अपने लेक्चर वो दे दे अपने आगे लेसन प्लान वगैरह जो भी बनाते हैं, ताकि SCERT से मुझे अप्रूव करा सकें।
जी बिल्कुल। और सर ऐसा कुछ है जो आपको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत हो SCERT से, जो अभी फ़िलहाल नहीं है या फिर है लेकिन और ज़्यादा चाहिए आपको सपोर्ट?
ऐसा तो यही है, देखो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम देखें, कुछ भी चीज़ के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ बैठने के लिए मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, सबके लिए सिटिंग अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम वहाँ से लैब में आ गए, ऑफिस बने हुए होते हैं सीनियर लेक्चरर के लिए, हर जगह 6 ऑफिस अपने सेपरेट हैं, क्योंकि ग्रेड बी का ऑफिसर होता है 5400 ग्रेड पे का, तो अलग अलग ऑफिस होने ज़रूरी है। फिर लेक्चरर के भी अपने अपने केबिन होने ज़रूरी हैं, लेकिन जगह भी है लेकिन पैसा वगैरह नहीं आ पाता, इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमिकल काफ़ी इशूज़ हैं। तो बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, व्हीकल हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी ड्यूटीज़ को और अच्छे से कर पाओगे। हालांकि अभी भी हम करते हैं, जैसे हम अपनी कार से चले जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, कोई बात नहीं भाई है, लेकिन काम तो काम है, अपने पास से करना पड़े चाहे।
सर फंडिंग का प्रोसेस रहता क्या है, मतलब आप कैसे SCERT तक अपनी रिक्वेस्ट पहुँचाते हैं?
ये सब डायरेक्ट प्राचार्य देखते हैं।
अच्छा
जी, बताया होगा सर ने आपको।
जी जी जी
जी।
तो आप अपने, तो सर तो ओवरऑल देख रहे हैं, तो सर को आपकी साथ मीटिंग करते हैं ताकि आप बता पाए कि बजट में क्या क्या चाहिए। तो
बेसिकली जैसे हमारे यूनिट में कुछ काम होना है, जैसे टेक्निकल एजुकेशन को लेके भी हमने यहाँ पे बच्चों को वो लगवाया सारे, ठीक है, अब ये सेपरेट ये मंगवाए थे NGO के माध्यम से किसी को भी, तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। डी आर यू में एडल्ट एजुकेशन को लेकर सर्वे करना होता है, जाके घर घर पे ग्राम प्रधान से सहयोग लेना होता है, ठीक है, BRC पे जाना होता है, BSA से कोऑर्डिनेट करना होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि BSA का कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन इस काम में, क्योंकि बेसिक एजुकेशन है, कहीं ना कहीं जो पावर्स हैं सारी की सारी किसी चीज़ को चेंज करने की, वो BSA के पास होती हैं, लेकिन BSA के पास इतना ओवरलोड है काम का कि DM के यहाँ मीटिंग में उन्हें इतना टाइम बीत जाता है कि वो सही से ध्यान नहीं दे पाते कहीं ना कहीं।
सर आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूट से या फिर
ऐसे ही रहता है कि मासिक जो बैठक होती है समीक्षा बैठक, उसमें यहाँ पर बुलाया जाता है AD बेसिक सर हों या BSA हों या जितने भी BOs हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, वो सब आते हैं, या PSR जी, उसके माध्यम से करते हैं।
अच्छा जो पॉइंटर्स उसने निकल कर आते हैं उस पे कैसे फॉलोअप होता है सर? फिर
फॉलोअप ऐसे होता है कि जैसे इस समय प्रेरणा ऐप वगैरह के माध्यम से जो हो रहे हैं सब चीज़ें, यह निपुण भारत चलाया जा रहा है, तो यहाँ समीक्षा बैठक होगी, उसकी निपुण प्रकोष्ठ बनाया गया है, उसका हेड अभी मुझे ही बनाया है। अब उस पर हम क्या करेंगे, जो ARPs हैं, SRD हैं, उनको बुलाएंगे कि कितना निपुण में जो मतलब उसके 5 लक्ष्य रखे गए हैं जो भी हैं अपने, वो उस पर आप कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं और कितना कब तक कर लोगे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पूछते हैं। फिर नेक्स्ट जब मीटिंग होगी समीक्षा बैठक, उसमें हम पूछेंगे पिछली बार आपने ये डाटा दिया था हमें, तो उसमें कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, उसका मूल्यांकन करते हैं, एनालाइज करते हैं, नहीं हो रहा है तो उसमें उत्तरदायित्व तय होता है फिर, ये सब चीज़ें।
अच्छा, तो सर अगर आप बता पाए BRC से, जैसे आपने बोला BRC और से आपको बात करनी होती है, BSA का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो उनके साथ आपकी इंटरेक्शन कैसी होती है, किस बारे में होती है?
ऐसे होती है जैसे अभी जो है एडल्ट एजुकेशन को लेकर डाटा लेना था कलेक्शन, अब डाटा के लिए इतना टाइम नहीं था, CRD को डाटा चाहिए था बहुत जल्दी, तो सर्वे नहीं कर पाते, लेकिन BSA के यहाँ से जो ऑफिस से डाटा उपलब्ध कराया गया, तो इस तरह की कुछ चीज़ें वो हमसे लेते हैं, हमें उन्हें देनी होती है, तो यही है कोऑर्डिनेशन मोबाइल पर होता है और मासिक बैठक के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है।
सर आपको लगता है कि अभी आपने कहा कि SARD ने बहुत जल्दी डेटा मांग लिया था, तो क्या आपको लगता है कि डायट अगर इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे तो वो बेटर होगा या
बिल्कुल, अगर आप किसी को भी अधिकार और शक्तियाँ ज़्यादा देंगे तो फिर उसके उत्तरदायित्व भी उतने बढ़ जाते हैं,
बिल्कुल
ठीक है ना, तो अगर इस तरह से डायट को ये इस तरह से आज़ादी देंगे और आज़ादी से वो काम कर सके तो अच्छे इसके वो निकले परिणाम रिजल्ट अच्छे आएंगे।
सर दूसरे डाइट्स में आपकी पोजीशन पे आपके डिपार्टमेंट मतलब जैसे इस डिवीजन में जो है ऑफिसर्स, उनसे भी आपकी बातचीत रहती है?
हाँ, यहाँ पर ना जितने भी मतलब ऑफिसर हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन से रिलेटेड बेसिकली, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन से भी होता है, DM से CDO से अभी मीटिंग होती है हर महीने, तो सर जाते हैं या हमें अपने साथ लेकर के जाते हैं या सर की जगह हम भी चले जाते हैं कभी कभी, तो ये कोऑर्डिनेशन तो सब डिस्ट्रिक्ट का आपस में होता ही है ऑफिसर्स का।
अच्छा, तो सर कोविड के समय आप डायट में नहीं थे
उसके लिए, तो क्योंकि तब तक तो जॉइनिंग नहीं हुई थी हमारी।
जी बिल्कुल
सर। वैसे आप अभी प्रेरणा ऐप के बारे में हम सर से बात करके, उन्होंने बोला कि हर किसी के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जब वो फील्ड वर्क पे जाते हैं, तो जब आप फील्ड वर्क पे जाते हैं तो आपके ऐप पे क्या क्या शो होता है?
ये होता है सबसे पहले तो हम उसमें उनका जो यू डाइस कोड वगैरह होता है वो डालते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है स्कूल की उस वगैरह, अब हमें वो जो है बेसिकली वहीं पर इंस्पेक्शन करना होता है, 30 मिनट्स का उसमें टाइम मिलता है, अब हम उसमें ये देखते हैं कि भाई कितने टीचर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, वो आज आए हैं या नहीं आए हैं, नहीं आए हैं तो उन्होंने छुट्टी का उनका अपना एक कोड होता है वो है या नहीं है, अवकाश उन्हें प्राप्त हुआ नहीं हुआ, मिड डे मील की व्यवस्था कैसी है, कि बच्चों को जो खाना है जो जिस दिन पे तय हुआ है वही दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कभी फ्रूट नहीं मिल रहे हों या कहीं दूध नहीं मिल पा रहा हो बच्चों को, होता भी है बहुत सी जगह शिकायतें आती हुई हैं, तो वो सब चीज़ें चेक करनी होती है जांच उसकी, उसके बाद बाउंड्री वॉल्स होती हैं, कायाकल्प के जो ऑपरेशन हैं उसके 19 जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर देखते हैं कि बाउंड्री वॉल वगैरह है या नहीं है, तो जितना भी इंस्पेक्शन का है यही सब है इसमें।
तो सर अगर आप देखते हैं कि कुछ सही से नहीं चल रहा हो स्कूल में, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके इंस्पेक्शन के बाद, तो फिर वो आप ऐप पे डाल देते हो, उसके बाद उस पे एक्शन लिया जाता है?
उसके ऊपर एक्शन बेसिक बिल्कुल लिया जाता है, क्योंकि वो हमारे जो महानिदेशक जी हैं और डायरेक्ट उनके पास तक वो डाटा पहुंचता है डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से। अगर हमें मिसाल के तौर पर किसी को चेतावनी देनी है टीचर को या समय पर काम नहीं कर रहा है, तो हम उसका लेटर यहाँ से इशू करा देते हैं डायरेक्ट प्राचार्य के नाम से, आगे हम सर को बोल देंगे सर ये चीज़ें वहाँ कमियाँ पाई गई हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है, सर उसका एक लेटर बनवाते हैं BSA को पहुँचाते हैं, BSA के माध्यम से CRD जाता है वो।
सर उस चीज़ को देखने के लिए कि क्या वो चीज़ हुई है नहीं जो आपने रेकमेंड करी आपके थ्रू,
नेक्स्ट टाइम जब जाते हैं तो उस पर देखते हैं कि हम उसमें सुधार हुआ है नहीं, तो बेसिकली सुधार हो जाता है।
अच्छा, कितने टाइम की विजिट रहती है सर?
एक महीना, मतलब ये समझिए आप के अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे अभी एक स्कूल की ना ऊपर की छत वगैरह में काफ़ी दिक्कत थी, तो उसके लिए तो क्योंकि पैसा फंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक वो चेंज नहीं होगा, या रसोई घर नहीं है बहुत से स्कूलों में तो उनमें टाइम लग जाता है, लेकिन किसी चीज़ में सुधार की जैसे टीचर्स हैं वो आ नहीं रहे हैं ड्यूटी पे, तो वहाँ तो जब लेटर जाते हैं उनके ऊपर तो फिर परमानेंट अपने तरीके से आते हैं ड्यूटी पे टाइम से, ये सब चीज़।
अच्छा, तो सर ऐसी कोई भी जगह हो जहाँ पे आपको, आपने आपने वो व्हीकल के बारे में बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, लेकिन उससे अलावा जो डेली जो ये प्री सर्विस इन सर्विस स्कूल्स में जो जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी भी तरीके की और सपोर्ट की ज़रूरत है और वो किससे है?
है कि कहीं ना कहीं जैसे अब BTC का है तो इसका एक महत्व था पहले, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है बीएड की वजह से, क्योंकि बेसिक एजुकेशन में बीएड को घुसा दिया गया
जी, जी, जी।
अब उसके बाद से जो है बच्चे ज़्यादातर बीएड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, अब BTC का वो रोल नहीं रह पाया जो पहले था,
क्रेज
वो ख़त्म हो गया। अब कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज है, 150 के आसपास कॉलेज हैं हमारे मेरठ में ना, तो वहाँ पर सीटें ही नहीं फुलफिल हो पा रही, ठीक है, तो जब डाइट की ही सीटें अपनी पूरी नहीं हो पा रही, 200 सीटें हैं हमारे यहाँ पर, वो ही नहीं कम्प्लीट हो पाती, तो जब बच्चे ही नहीं आ पा रहे हैं तो फिर ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। मतलब अगर हम इन सर्विस की, उसकी प्री सर्विस की बात करें, इन सर्विस में ये है कि इन सर्विस में सिर्फ हम जो हैं अपना एक मतलब वो दे सकते हैं, अपनी समीक्षा करके किसी भी चीज़ की रिपोर्ट दे सकते हैं BSA को, डायरेक्ट हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि हम उन्हें चेतावनी दें या उनकी सैलरी रोकें या इस तरह की चीज़ें।
सर आप सुझाव दे सकते हैं कि कैसे चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं? कि
सुझाव यही होना चाहिए कुछ भी इस तरह की, नंबर एक पे तो हमें BTC का जो चीज़ें हैं उसे दोबारा से बढ़ानी होंगी, या इस तरह भी कर सकते हैं हम कि BEd का कोई भी चीज़ें डाइट में स्टार्ट हो सके, या कोई और डिप्लोमा जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया भी गया है
जी, जी,
तो
जी।
लगता है कि शायद BTC BEd वगैरह को भी इससे जोड़ दिया जाए। दूसरा ये है कि हम ये कर सकते हैं, जितने भी हमारे अधिकार हैं डाइट प्राचार्य के, तो उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि टीचर्स वगैरह जब जाएं इंस्पेक्शन के लिए, हम जाएं या जाएं, तो थोड़ा उनमें एक भय हो कि भाई जिस तरह से BSA की वैल्यू है उसी तरह से इनके पास भी कुछ कार्य क्षेत्र अपने अधिकार होने चाहिए, शक्तियाँ, पावर्स, क्योंकि जब तक आपके पावर्स नहीं होंगे, शक्ति नहीं होंगे, आप क्या सुधार कर पाओगे? सामने वाला कुछ सुनेगा ही नहीं, उसे पता है क्योंकि इनसे कुछ होना नहीं है। और जो हम अपनी रिपोर्ट समीक्षा की उन्हें बना के दें, जांच जिसकी होनी चाहिए, तो वो भी सही समय पे हो, और उसका माध्यम है कोऑर्डिनेशन, BSA से कोऑर्डिनेशन हो, कोई रिपोर्ट अगर यहाँ जा से जाए बन के तो उस पर वो कार्रवाई करें, ये चीज़ें हैं।
सर यहाँ पे आप सीनियर लेक्चरर के लिए कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं?
जी, वर्कशॉप्स वगैरह जैसे अभी नीपा में एडमिनिस्ट्रेशन को लेके चला गया था, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को लेके, तो वहाँ पर भी प्रोग्राम होता है नीपा दिल्ली में, तो हम गए थे, यहाँ से सीनियर लेक्चरर को बुलाया था।
अच्छा
जी,
अच्छा,
सीमेंट में होता है, अभी उपाम में हुआ है, ट्रेन मास्टर ट्रेनर्स को लेके, तो वहाँ भी भेजा जाता है।
अच्छा, और सर आपकी करियर ग्रोथ यहाँ पे क्या है सीनियर लेक्चरर?
करियर ग्रोथ यही है कि PS का कैडर होता है हमारा, ठीक है, तो कभी डाइट में आते हैं तो सीनियर लेक्चरर कहलाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट पे हमें गवर्नमेंट भेजेगी तो हम जो है वहाँ पर BSA कहलाएंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
गवर्नमेंट ही भेजेगी सर या आपका कुछ से रहेगा?
नहीं, हमसे नहीं होता, वो शासन का ही काम है।
अच्छा,
BSA यहाँ आ जाते हैं, हम वहाँ पर इंटरचेंजेबल होता है, और इसके अलावा जैसे प्रमोशन होता है तो इसके बाद हम अगर डाइट में रहेंगे तो प्राचार्य पद पर होगा, और अगर उस पर फील्ड में रहेंगे तो DIS वगैरह।
किस बेसिस पर होगा सर प्रमोशन, कि आप कितना टाइमिंग जगह सर्व?
वो टाइमिंग का होता है अपना, तो कैडर का जो उसमें नियमावली है उसके अकॉर्डिंग, उसमें अगर आपके ऊपर कोई मतलब कोई गलत आपका रिकॉर्ड नहीं है तो आपका प्रमोशन में फिर प्रॉब्लम आती है।
हुमाना पीपल टू पीपल जुड़ा हुआ है इस डाइट के साथ, आपके यूनिट के लिए वो कैसे हेल्पफुल है या कैसे इम्पैक्ट करता है?
ऐसे करता है जैसे DRUs की हम बात कर लें, अब हम यहाँ पे मासिक समीक्षा बैठक में ग्राम प्रधान को हमने बुलाया, तो उनसे हमें उस गांव के स्थिति पता चल जाती है कि यहाँ पर कितने वृद्ध ऐसे हैं जो मतलब जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो उनको जो है BRC के माध्यम से या ग्राम प्रधान में जो वहाँ पे उनके अपने अपने स्कूल होते हैं उनकी वीकली जो है क्लास वगैरह चला दी जाती है, रेमेडियल क्लासेस चला दी जाती हैं, उसके माध्यम से उन्हें शिक्षा देते हैं तो अपलोड होता है, जागरूकता आती है, फिर वो अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं उसी के अनुरूप। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट का प्लान है कि 14 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो, मतलब 7 वर्ष से ऊपर का, उसे साक्षरता में लाना।
सर तो जैसे अभी ये ट्रेनिंग्स आपने मेंशन की दिल्ली में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, तो कुछ ऐसी ट्रेनिंग सर जो आप चाहते हैं ऑर्गेनाइज की जाए इन इन विषयों पर जिससे आपके लिए काम करने में आसानी हो?
जैसे अब हमारे यहाँ पे प्रवक्ता हैं, 17 प्रवक्ता हैं, 4 वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, 1 प्राचार्य, 1 प्राचार्य, SCRT को ना मतलब समय समय पे हर 6 महीने में 1 साल में एक बार ना ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप 1 महीना की हो या 15 दिन की हो अपने अकॉर्डिंग, ताकि जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है उनसे भी रूबरू हो सकें वो, और मास्टर ट्रेनर्स के रूप में वहाँ पर ट्रेनिंग ले गए, और फिर यहाँ पर आने के बाद ARP और SRG जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दें, ताकि वो टीचर्स को ट्रेनिंग दें और एक जो चैन है वो बन जाए और आखिर में बच्चों तक वो पहुँच सके।
सर यहाँ पे जो लेक्चरर्स हैं उनसे तो आपकी बातचीत होती रही होती होंगी, तो उनके हिसाब से अभी डाइट में क्या बेहतर होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा एकेडमिक पार्ट देखते हैं, तो क्या वो फीडबैक आपको देते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं वर्क कर रहा है?
नहीं, फीडबैक मिलता है जैसे अब क्लास का है उनका, मेन उनका काम अकेडमी में यही है कि एक तो क्लास का और सपोर्टिव सुपरविजन के लिए 10 स्कूल उन्हें करने होते हैं अपने 1 महीने में, स्कूलों में जा जाके उनको सपोर्ट करते हैं टीचर्स को, ताकि एजुकेशन अच्छे से हो सके और बच्चों को उसका लाभ मिल सके। और यहाँ पर वो अकेडमी जो DL-ED वाले जो बच्चे होते हैं BTC वाले, उनको शिक्षा देते हैं जो भी अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, मैथ वगैरह साइंस वगैरह वो पढ़ाते हैं, तो उसके लिए यही है कि उस पर हमने काम काफ़ी किया भी है सर के आने के बाद से। पहले यहाँ पे बोर्ड वगैरह की प्रॉब्लम थी, ब्लैक बोर्ड थे उन पे चौक वगैरह चलती नहीं है, तो अभी ये पीछे कि हमने 3-4 बिल्डिंग बनवाई है नहीं ठीक है, उसके अलावा वाइट बोर्ड लगवाए हैं, अभी प्रोजेक्टर लगवाए जा रहे हैं, तो ये सब सुधार हो रहा है।
जी जी बिल्कुल सर, आपको कुछ और बताना है हमें जो हमारी स्टडी के लिए हेल्पफुल हो सकता है?
देखो उसके लिए तो यही है कि डाइट जो है एक महत्वपूर्ण यूनिट है सबसे ज़्यादा मेरी नज़रों में, क्योंकि यहीं पे आपको प्री सर्विस हो या इन सर्विस हो सबका जुड़ाव शिक्षा से संबंधित वो डाइट नहीं होता है, तो डाइट को कुछ ना कुछ अधिकार ऐसे मिलने चाहिए, क्योंकि डाइट में बैठे हुए प्राचार्य जो है उनका पूरे ज़िले में नंबर 1 रैंक का अधिकारी होता है, DM से भी ऊपर, तो इनको वो अधिकार और वो जो शक्तियाँ मिलनी चाहिए जिसके ये हकदार हैं बेसिकली। जैसे BSA हो तो BSA को कहीं ना कहीं या तो इनके अधीन लाया जाए, ये कम से कम इक्वल तो पावर इनकी दोनों की होनी चाहिए, ताकि कोऑर्डिनेशन और अच्छे से हो पाए और बच्चों को जो क्वालिटी आनी चाहिए या पैसे वगैरह को लेके फंडिंग वगैरह होती है बच्चों के पास तक पहुँचती है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल किस तरह से अप्रूव हों, इंटरनेट का कनेक्शन कैसे पहुँचे स्कूलों में, तो उसका समाधान इसी तरह से हो सकता है।
थैंक यू सो मच सर।